ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 255। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिनको तुम जीता कहते हो उनमें जीता भी कोई नहीं, और जो जीता नहीं तो मरा कैसे हो? जो कहिए जीता है तो जैसे जीता है वैसे ही मृतक है, मृतक और जीते में भी कुछ भेद नहीं। इसलिए सब शब्दों से रहित और सबका अधिष्ठान वही सत्ता है। उसमें नानात्व दिखता भी है परंतु हुआ कुछ नहीं। पर्वत को स्थूल दिखाते हैं, वे अणुमात्र भी नहीं है। जैसे स्वप्न में पृथ्वी आदि तत्व दिखते हैं परंतु कुछ हुए नहीं, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और उसी में यह जगत दिखता है। हे रामचंद्र जी, परमार्थ सत्ता से जगत प्रकट हुआ है, वह तो और कुछ न हुआ, इसलिए वही सत्ता जगत रूप होकर भासित होती है। कोई कहते हैं कि आत्मा में है और कोई कहते हैं कि आत्मा में कुछ नहीं है, पर आत्मा में दोनों शब्दों का अभाव है, बल्कि अभाव का भी अभाव है। यह भी तुम्हारे जानने के लिए कहता हूं, वह तो स्वस्थ और परम शांत रूप है, उसमें और तुम में कुछ भेद नहीं। वह परिपूर्ण अच्युत अनंत और अद्वैत है, वही जगत रूप होकर दिखता है। जैसे कोई पुरुष शयन करता है तो सुषुप्ति में अद्वैत रूप हो जाता है, फिर सुषुप्ति से स्वप्न फुराता है और फिर सुषुप्ति में वह लीन हो जाता है, तो उपजा क्या और लीन क्या हुआ? स्वप्न के आदि में भी अद्वैत सत्ता थी, अंत में भी वही रही, मध्य में जो कुछ दिखा वह भी वही रूप हुआ, आत्मा से भिन्न तो कुछ न हुआ। इसलिए सब जगत ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, मुझको तो सदा अनुभव रूप जगत दिखता है, मैं नहीं जानता कि अज्ञानी को क्या दिखता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि से जो जागा है उसको अद्वैत अपना रूप दिखता है, वैसे ही तुरीयावस्था में दिखता है। तुरीय और जागृत में भेद कुछ नहीं, जागृत ही तुरीय का नाम है और जागृत तुरीय रूप है। बल्कि यह भी क्या कहना है, सभी अवस्थाएं तुरीय रूप है, तुरीय जागृत सत्ता का नाम है। जो अनुभव के साक्षी ज्योति है वह जागृत में भी साक्षी रूप है, स्वप्न में भी साक्षी रूप है और सुषुप्ति में भी साक्षी रूप है। इसलिए सब तुरीय रूप है, परंतु जिसको स्वरूप का अनुभव हुआ है उस ज्ञानवान को ऐसे ही दिखता है और अज्ञानी को भिन्न भिन्न अवस्थाएं दिखती है। हे रामचंद्र जी, एक पदार्थ का वृत्ति ने त्याग किया पर वह दूसरे पदार्थ में नहीं लगी, वह जो मध्य में अनुभव ज्योति है उसको तुम आत्मसत्ता जानो, और उसमें जो फिर कुछ भासित हुआ उसे भी वही रूप जानो। जैसे जागृत को त्याग कर स्वप्न का आदि साक्षी अनुभव मात्र होता है और उस सत्ता में स्वप्न का शरीर पदार्थ भासित होते हैं, वे भी आत्म रूप है, वैसे ही जो कुछ जागृत शरीर और पदार्थ दिखते हैं वे आत्म रूप है। जब तुम ऐसे जानोगे तब तुमको कोई दुख स्पर्श न करेगा। जैसे स्वप्न की सृष्टि में अपने स्वरूप की स्मृति आने से दुख भी सुख होता है, और बोलना चालना खाना पीना देना लेना आदि शब्द और अर्थ और द्वैत रूप युद्ध कर्म सब अद्वैत अपने आप हो जाते हैं। और जीव व्यवहार भी सब करता है परंतु उसके अपने निश्चय में कुछ नहीं फुरता। वैसे ही जो पुरुष अपने स्वरूप में जागे हैं उनको सब जगत आत्म रूप ही दिखता है। जैसे अग्नि में उष्णता और बर्फ में शीतलता स्वाभाविक है, वैसे ही ज्ञानवान की आत्मदृष्टि भी स्वाभाविक है। और लोगों को यह दृष्टि यत्न से प्राप्त होती है, पर ज्ञानवान को स्वाभाविक होती है। जिसको तुम इच्छा कहते हो वह ज्ञानवान को सब ब्रह्म रूप है और अनिच्छा भी ब्रह्म रूप भासित होती है। ज्ञानवान को आत्मानंद प्राप्त हुआ है, वह अपने स्वभाव में सदा स्थित है, इससे उसको कोई कल्पना नहीं उठती और वह विद्यमान निवारण दृष्टि लेकर स्थित होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में जो पृथ्वी आदि पदार्थ दिखते हैं वे अविद्यमान हैं, कुछ है नहीं, वैसे ही पितामह आदि ब्रह्मा को भी आकाश रूप ही जानो, वह भी कुछ है नहीं, अर्थात आत्मसत्ता से भिन्न कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले स्वाभाविक है और तरंग शब्द कहना भी उनको नहीं बनता, वे तो जल रूप है, वैसे ही जिनको तुम ब्रह्मा जी कहते हो वह और कोई नहीं, आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। ब्रह्मा जी ही विराट है। जैसे पत्ते फूल फल और टास वृक्ष के अंग है, वैसे ही सब भूत उस विराट के अंग है। जब ब्रह्मा ही आकाश रूप है तब उसके अंग जगत को वार्ता क्या कहिए। हे रामचंद्र जी, विराट के न प्राण है, न आकार है, न इंद्रिया है, न मन है, न बुद्धि है और न इच्छा है, केवल चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। जब विराट ही नहीं तब जगत कैसे हो। जो तुम कहो कि आकाश रूप के अंग कैसे दिखते हैं, तो हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में बड़े पहाड़ प्रत्यक्ष दिखते हैं परंतु कुछ बने नहीं, आकाश रूप है, वैसे ही आदि विराट भी कुछ बना नहीं, आकाश रूप है, तब उसके अंग मैं आकार रूप कैसे कहूं। सब आकार संकल्प पूर्ति नहीं कल्पित है, एक आत्मसत्ता ही सर्वदा ज्यों की त्यों स्थित है, उसमें स्मृति और अनुभव क्या कहिए। अनुभव और स्मृति भी उसी का आभास है। जैसे समुद्र में तरंग आभास है, वैसे ही आत्मा में अनुभव और स्मृति भी आभास है। स्मृति भी उसकी होती है जिसका प्रथम अनुभव होता है, सो अनुभव भी जगत में होता है। पर जहां जगत ही न उपजा हो तो अनुभव और स्मृति उसको कैसे हो। इसलिए न अनुभव है न स्मृति है, इस कल्पना को त्याग दो। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।